संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे। समय सार परमागम की गुणिन त्रास में गाथा चल रही है, जिसमें अनिर्दिष्ट संस्थान संबंधी चार बोलों की चर्चा की। अब उसके आगे जयसेनाचार्य ही इसका जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल अलग तरह से करते हैं। क्या कहते हैं देखो, वो कहते हैं संस्थान नामक जो नामकरण है उससे रहित है भगवान आत्मा। क्षेत्रकार के जो संस्थान है ना, वो संस्थान इस भगवान आत्मा में नहीं है, इसलिए ये अनिर्दिष्ट संस्थान है, ऐसा जयसेनाचार्य कहते हैं। और इस बात की पुष्टि आगे जो गाथाएं आने वाली हैं उनमें आत्मा को गुणस्थान मायना स्थान से रहत कहा गया है, वहां संस्थान से भी रहत कहा गया है। तो इन दोनों का एक ही अर्थ हुआ, फिर भी वो ऐसा कहते हैं। देखो अपन पढ़े, आपका पेज नंबर निकालिए 414 समय सार अनुशीलन। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है, ये भाग्य से उन लोगों को ही प्राप्त हो रहा है जो शिविर में के बाद यहां रह गए हैं विद्यार्थियों को, उस वक्त तक नहीं आ पाई यहां तक अपनी चर्चा। और शास्त्रों में जो प्रश्न है 414, शास्त्रों में समचतुर्ष आदि 6 संस्थानों की चर्चा है। वे 6 संस्थान आत्मा में नहीं है, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। आचार्य अमृतचंद ने ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया? ऐसा अर्थ आगे की 50वीं गाथा में किया गया, वहां ही क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां यह कहा गया है कि आत्मा में संस्थान नहीं है, अतः वहां आत्मा में तम सतुर्ष आदि 6 संस्थानों का निषेध किया गया है। वहां असंस्थान की बात है और यहां अनिर्दिष्ट संस्थान की बात है। वहां तो एक संस्थान है नहीं और यहां कहा गया संस्थान कहा नहीं जा सकता। वहां तो कहा आकार है नहीं और यहां कह रहे हैं कि आकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों अंतर समझ में आए ना? अमृतचंद का इस दृष्टि में ऐसा भेद है, कहे जाने के निषेध की बात है एक, जो वहां संस्थान के निषेध की बात है और यहां संस्थान के बारे में कहे जाने के निषेध की बात है ना। सब आप वहां जाएंगे तो ये कह नहीं जाऊंगा ए, और अभी मैं नहीं कह सकता। इन दोनों का एक अर्थ है क्यों? पहले में तो बात नक्की है कि नहीं जाऊंगा और दूसरे में जाने और नहीं जाने के मामले में अभी कुछ निश्चित नहीं है। जाऊंगा तो कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो सब बातें बात की हैं। ये दोनों में अंतर है। अब प्रश्न कि आचार्य जयसेन ने तो इसी गाथा में सम चतुर्ष आदि 6 संस्थान रहित ऐसा अर्थ किया है। देखो आपको बिल्कुल जयसेन और अमृतचंद्र दोनों की बुद्धि की तीक्ष्णता में कितना अंतर है वो आपके ख्याल में यहां ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो वो बात आगे कही गई है इस गाथा में, वो अर्थ करने का मतलब फिर रिपीटेशन हो जाएगा, और दूसरा मूल गाथा में अनिदिक्ष संस्थान लिखा है, तो उसका अर्थ स्थान असंस्थान कैसे किया जा सकता है। और क्योंकि अमृत चंद्र ने ये अर्थ पहले कर दिया था, तो उनके पास ये अर्थ उपलब्ध था, फिर भी उनको वो अर्थ करने का भाव आया है ना। और इसमें हम जो कुछ आपको हमें समझना है वो समझे, हम अधिक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। देखो उत्तर किया है तो अच्छा ही किया है, पर उन्होंने आगामी 50वीं गाथा में असंस्थान का भी यही अर्थ किया है। जयसेन ने असंस्थान और अनिर्दिष्ट संस्थान दोनों का एक ही अर्थ किया है, और अमर चंद्र ने दोनों के अलग अलग अर्थ किए हैं। बात समझ में आ रही ना, ज्यादा कमेंट्री में इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दो आचार्यों का मामला है ना। लेकिन बात का अंतर तो हमें समझना ही पड़ेगा ना, तो दो तरह से अर्थ किया है ना, क्यों तो वो क्या अंतर है हम उस समझ से भी अपने को वंचित नहीं रख सकते, और उसमें हमारा दिमाग चलेगा तो दिमाग को भी नहीं रोक सकते, आचार्य भी हमें रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसी की अभिनय भी नहीं करना चाहते हैं। क्या आप दोनों में से किस अर्थ को प्रमाण मानते हैं? सामने वाला थोड़ी आसानी से छोड़ता है आपसे, आजकल के जो पत्रकार हो गए ना, फिर बाल की खाल उखाड़ करके अब कुछ ना कुछ ऐसा कहलवा लेते हैं और फिर तहलका मचाते हैं। क्या कि ये उनको नहीं मानते हैं, इन आचार्यों को मानते हैं, उन आचार्यों को नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं, वो करते हैं, फिर ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, ये महान है और ये महान है, उनकी महानता बताई जाने लगती है, ऐसा लगता है ये महानता उनकी महानता बताना उनको कम इष्ट है, लेकिन हमारी खिंचाई करना उन्हें ज्यादा इष्ट है। क्यों मोहनलाल जी, देखो हम दोनों ही अर्थों को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थों के प्रयोजन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा असंस्थान भी है और अनिर्दिष्ट संस्थान भी है, तो ये अर्थ कह दिया तो शास्त्र के विरुद्ध तो है कुछ है नहीं, बात तो मूलता तो कोई विरोध हुआ नहीं, क्यों अब इसका अर्थ यहां था या नहीं था इस ज्यादा चक्कर में हम क्यों पढ़े। किसी ने कोई गाथा करते करते कोई एक ऐसी बात कह दी जो गाथा में नहीं है, बाहर की बात कह दी, लेकिन वो बात शास्त्र के विरुद्ध हो तो हम उसको कोई कमेंट भी करें, लेकिन वो बात अन्य शास्त्रों में मिलती है, इसी शास्त्र में अन्य जगह मिलती है, तो हम उसको गलत क्यों कहें, क्योंकि लोग ये भी समझ सकते हैं कि वो बात गलत है ना। हम दोनों ही अर्थों को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थों के प्रयोजन में कोई अंतर नहीं है, फिर भी आप दोनों में से अच्छा अर्थ किसे समझते हैं? आचार्यों की वाणी में अच्छे बुरे का भेद हमें भाषित नहीं होता, हमारा काम तो दोनों के ही कथनों में से आचार्य कुंद कुंद की वाणी के मर्म को समझना और समझाना है। हम किसी की परीक्षा करने नहीं बैठे हैं, हमको कुंद कुंद की गाथा का अर्थ समझना है, और दोनों आचार्यों ने वो अर्थ किया है तो उस अर्थ को हम पढ़कर समझकर हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाते हैं, आप वो नहीं खोज पाए तो हम उसको निकाल के रख देते हैं आपके सामने, दोनों के देखो यहां इनने एक किया इनने एक किया। आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते अतः चतुराई से टाल रहे हैं। क्या क्यों? अरे भाई इसमें चतुराई की क्या बात है, हम भावलिंगी संतों में ऐसा भेद कैसे कर सकते हैं? सूक्ष्म ज्ञान में फर्क हो सकता है, लेकिन भावलिंगी पना में तो कोई कमी नहीं है ना, इससे उनका मुनि पना तो खंडित नहीं हो गया, ख्याल में ना बात है? हमारा काम तो इतना ही है कि हम विभिन्न विशेषणों के जो विभिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं उन्हें पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दें। नक्षत्रम क्यों, वहां ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, क्यों हमारा इतना ड्यूटी है, अनुशीलन इसका नाम है, समझ रहे हैं ना। जब तक उनमें कोई ऐसा अंतर न हो कि जिससे सैद्धांतिक मतभेद खड़ा होता हो, तब तक उनके संदर्भ में कुछ भी टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं, अनर्गल चेष्टा है, समझ रहे हैं। मतलब सैद्धांतिक अंतर होगा तो बात कुछ कहनी पड़ेगी, ध्यान रहे ना, वो भी अत्यंत विनम्र भाषा में उनकी मर्यादा रखते हुए, ध्यान रहे ना। लेकिन जब तक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है तो कुछ भी टिप्पणी करना कि ये अच्छा है वो बुरा है समझदारी का काम नहीं है, अनर्गल चेष्टा है। हम उसकी जांच करने नहीं बैठे हैं कि आचार्यों ने किसने सही लिखा किसने गलत लिखा, हम परीक्षक नहीं हैं, हम तो आचार्यों के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझना चाहते हैं। इस तरह से अनिर्दिष्ट संस्थान के चर्चा समाप्त होती है। अब जो असली विशेषण है एक बहुत महत्वपूर्ण है, अव्यक्त। अव्यक्त विशेषण का अर्थ कुंद ने एक जगह स्पर्श ही कर दिया है और दूसरी जगह अलग किया है, स्पर्श को ऊपर से ले लिया है, क्योंकि स्पर्श शब्द मूल गाथा में नहीं है। अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम तेजना गुण मसद्दम जान अलंग ग्रहणम जीवो अनुगत संस्कार है। यहां जो अव्यक्त शब्द के छह अलग अर्थ किए हैं, शुरू के जो दो अर्थ हैं पढ़ते हैं अपन, कहां है कहां चले थे, पहले अर्थ में गे भावों से और दूसरे अर्थ में भावक भावों से भिन्नता बताई गई है। आपको याद होगा कि 31वीं गाथा में गे भावों से भिन्नता बताया था आत्मा को और 32वीं गाथा में भावक भावों से भिन्न बताया था आत्मा को। गे भाव माने होता है क्षय द्रव्य जो आत्मा के जानने में आते हैं और भावक भाव का मतलब होता है वो राग मोह राग द्वेष के परिणाम विकारी भाव आत्मा के। तो सीधा सच्चे वर्णादि अरु रागादि तें निज भाव को न्यारा किया कि वर्णादि और रागादि से भिन्नता की बात है, है ना। अब इसी को उनने कहा छह लिखा छह लोक व्यक्त हैं, छह द्रव्य जो हैं छह द्रव्यमयी लोक व्यक्त हैं। द्रव्य की लोक की परिभाषा क्या है, विश्व कहते हैं। इन छह डाला में आई है ये बात, आई है कि ध्यान में आता है कि नेहू न करे न धरे को सद द्रव्यमयी न हरे को सो लोक हमारी बात तो यही खत्म हो जाती है सो लोक, क्यों लोक की परिभाषा खत्म हो गई अस्थि से और नास्ति से। अस्थि से सद द्रव्यमयी आ गया ना, छह द्रव्यमय वह लोक है और नास्ति से दुनिया ऐसा मानती है कि इस दुनिया को लोक को किसी ने बनाया है और कोई इसको संभाल के रखे है और कोई मौका पर इसको नाश भी कर सकता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, छह द्रव्यमयी लोक का किसी कोई करता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है और कोई नाश करता नहीं है। तो ये लोक की जो मान्यताएं हैं ना तीन, उनके निषेध पर गए मतार्थ एक तरीके से, वो निषेध परक है, इसलिए वो नास्ती से हुआ। ऐसे लोग कैसा नहीं है, और इस लोग का स्वरूप तो नहीं है ना, तो इसे किसी ने बनाया नहीं है। इस लोग का क्या हुआ, लोग में कितने गुण बढ़ गए। ये रूमाल कैसा है कि एक तो मुझे इसे किसी ने दिया नहीं है, दूसरा मैंने इसकी चोरी नहीं की है, और तीसरा मैंने इसे पैसे से खरीदा है। इसे क्या लेना देना है इन तीनों बातों से। इससे ये रूमाल का स्वरूप कहाँ आया इसमें, क्यों किसी ने दिया है कि नहीं दिया है, चोरी तो नहीं की है, पैसे से खरीदा है, इसमें इसका स्वरूप बताओ ना कि रूमाल क्या है, क्यों। तो ये कपास के ताने वाने का एक पिंड है, स्कंध है पुर्गल का, ये बताओ ना। तो ऐसी बात हुई ना कि हूं ना करे ना धरे को न सद न हरे को। लेकिन वो लोक में वो मान्यता इतनी जबरदस्त है कि उसकी चर्चा करना दौलत राम जी ने बहुत जरूरी समझा। असली परिभाषा वो क्या है, सद्द्रव्यमयी है ना। अब ये दौलत राम में भूजादास में क्या अंतर है, ये भी याद थोड़ा बता देता हूं। थोड़ा भूजादास को सऊदय राजू तंग नभे लोक पुरुष संथान, खत्म। आगे की बात थोड़ी करने, लोक का स्वरूप तो खत्म हो गया ना, कि चौदह राज ऊंचा है और पुरुषाकार है। अब जो उसके आकार पे चले गए, बोलो क्यों, समझे। अब आकार बताने लगे लोक का, कैसा आकार है और कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है, क्यों। इन्होंने लोक की चर्चा की, और लोक की बात तो दोनों सही है ना, लोक चौदह राजू का है, वास्तव में इन लोकाकाश को लोक कह रहे हैं, क्यों समझ में आया कि नहीं है। लेकिन लोक भावना में अकेले लोकाकाश को लेना है कि क्षेत्र में को लेना है, यहां मैं किसी की कोई आलोचना किसी की नहीं करूंगा, दोनों का सिर्फ अंतर बताऊंगा, आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करूंगा, आपकी बुद्धि को सक्रिय करूंगा। ये तो लोकाकाश की बात है ना, चौदह राजू तंग नभ, नभ लिखा ना, लभ नभ, तो चौदह अलोकाकाश तो चौदह राजू नहीं है, क्यों। कोई तो नभ कह रहे, नभ में तो लोकाकाश लोकाकाश सब आ जाता है, तो चौदह राजू की बात कहते ही हमारा लोकाकाश इसका अर्थ हो गया। और पुरुषाकार अलोकाकाश तो पुरुषाकार नहीं है, दोनों बातें लोकाकाश के संदर्भ में है, और स्पष्ट नभ लिख दिया तो अकेले आकाश का नाम लोक है क्या। तो जब उनको लोक भावना की बात आई तो उनके दिमाग में लोकाकाश आया, और इनके दिमाग में क्षेत्रमय आया। हम तो समझ में आ गया नहीं। अब लेकिन दूसरी पंक्ति दोनों की समान है, इसलिए कोई फंडामेंटल अंतर नहीं है। क्या समान है दूसरी पंक्ति में, कि ऐसे लोक में उदय राज उतंग नव लोक पुरुष संसान और जाने जीव अनादिते भरमत है निर्ज्ञान। और उसने क्या कहा, सर द्रुमयी न हरे को सो लोक माही निर्गो जाने बिना ये जीव संसार में घूम रहा है। तो फंडामेंटल की बात पड़ी, इनमें अंतर तो आया नहीं, ये संसार में सुख नहीं है, क्यों। लेकिन दोनों को अंतर को तो समझना पड़ेगा ना। मैंने बारह भावना अनुशीलन एक किताब लिखी है, 150 पेज की है, तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, देखी नहीं होगी तो, है ना, वो तो पढ़ने लायक है। उसमें 2000 वर्ष में जितनी भी बारह भावनाएं लिखी गई उन सबको तो हम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि बहुत है। लेकिन उसमें हमने इस दृष्टि से विचार किया कि स्टाइल कितनी कितनी है। स्टाइल का मतलब क्या, एक ही लेन पे यदि 1000 भावनाएं लिखी गई तो हमने एक ही भावना से काम चला लिया, उनको हरेक का उल्लेख नहीं किया। लेकिन यदि स्टाइल बदल गई तो उस भावना का उल्लेख अलग किया। बदल गई माने कैसे, जैसे यही बातें हुई ना, एक कहता है लोकाकाश में जीव घूम रहा है सुख नहीं, और दूसरा कहता सदगुरुमयी लोग, समझ गए ना। ऐसे संसार भावना में कुछ लोग संसार भावना में और लोक भावना में ऐसा ही नहीं समझते। संसार माने वही संसार में जीव घूम रहा है अनाधिकाल से, तो संसार माने तीन लोग। आत्मा का अधिकारी परिणाम है संसार, समझे ना। जहां अलग अलग दृष्टिकोण आए हैं उनमें, उनको वहां अलग प्रस्तुत अवश्य किया गया है कि ये यहां एक इस तरीके से कहते हैं। तो वो सारे दृष्टिकोण जो 12 भावनाओं में आए हैं 2000 वर्ष में, वो सब आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे। क्या तो समझ लीजिएगा आपने वे सारी 12 भावनाएं पढ़ ली, बाकी तो रिपीटिशन में लगा ना बाकी भावनाओं में। तो समझे में, जैसे देखिए राजा राणा छत्रपति हाथों के असवार और जयचंद छाबड़ा की 12 भावना पढ़ो। द्रव्य दृष्टि कर सदर थिर और पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप आ लखो पर्याय नय कर गौण। अब बोलिए कहा दोनों बातों में कितना फर्क है। माता कह रही मरने मरने की बात है, राजा छत्रपति आदमी के असवार से मरना सबको एक दिन। अगर मरने का नाम अनित्यता है, यदि मरने को छोड़ दें तो बाकी अनित्यता कहीं कुछ है नहीं। क्या मरने का नाम अध्रुवता है? क्यों अगले एक मरने की बात पकड़ के बैठ गए दे दो, और एक तो कहते हैं दो ही पक्ष सामने रखते हैं कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। द्रव्य दृष्टि को प्रधान मुख्य रख दो, पर्याय न्याय को गौण कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया। जब आज से 40 साल पहले हमने ये बाल गोद पाठमाला बनाई, तो हमने उसमें राजा पहले सर जगह राजा राणा ये बाली भावना भूजा दास जी की रखी जाती थी, तो सबको यही कंठस्थ थी। और हमने जयचंद छाबड़ा की बाल भावना रखी, तो हमने सब भावनाएं उस वक्त ठंड मारी थी, समझे ना। तो हमको बहुत बढ़िया लगी, तो हमने वो भावना रखी। तो फूलचंद सिद्धांताचार्य ने विरोध किया मीटिंग में, तो आपने सब इच्छा किया, ये बोलना क्यों बदल दिया, क्या बदला क्या है, भूजा दास की हटा दी। अरे इसकी हटा दी, किसकी रखी दी, ये कौन है, कौन हटाने वाला, कोई रखने वाला, क्यों। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने तो जितनी 12 भावनाएं हमें उपलब्ध हुई उनमें से चुनाव किया है, और जो सबसे बढ़िया लगी हमें जिसमें सर्वांग है वो हमने रखी है, आप बताओ दोनों में से तुलना करके। तो हमने ये बात उनको बताई, क्यों बैलेंस कहां है, कहीं से आप वो प्रचलित है। तो ये प्रचलित होना भी गुण है और प्रचलित नहीं होना ये दुर्गुण है। क्यों कालिदास को ये परेशानी खड़ी हुई थी आपको मालूम है, उनने मालव कागजी मित्र, उनका एक नाटक है, क्या नाम है, मालविका और अग्निमित्र। मालविका नायिका का नाम है और अग्निमित्र नायक का नाम है, राजा का नाम है और रानी का नाम है, प्रेमी प्रेम का कौन, मालविका और अग्निमित्र, उनका पूरे नाटक है। बहुत कम प्रचलित है, ये शकुंतला वगैरह ज्यादा प्रचलित है। तो उसने लिखना पड़ा उनको, पुराण मित्र साधु सर्वम, क्या लिखा, नए नए कवि थे और पुराने कवि थे, तो सब लोग कहते थे अरे क्या बेकार 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 नया। उनका देखो भाष का देखो, हाथो भाषा भाष कवि हाथ कितना महान है उसमें, ये है। तो कालिदास को कहना पड़ा, कहना नहीं चाहिए था, कहना ना पड़े किसी लेखक को बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहना पड़ा ये भी बहुत दुख की बात है कि उनने कहा ये नहीं, उन्हें ये कहना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, ये दुख की बात है। उन्हें कहना पड़ा कि भैया सब बातें पुरानी अच्छी नहीं होती, क्या पुराण नित्यैव न साधु सर्वम, पुरानी चीज सब जगह अच्छी होती है और नई चीज बुरी होती है, ये कहां से, कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तियों को नए व पुराने के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए, वस्तु को देखकर बिना काल का विचार किए, दोनों वस्तु रखो, कौन लेखक है इसका विचार किए बिना, और फिर निर्णय करो कि कौन अच्छी और कौन बुरी है, करना है तो। इधर क्या है देखिए, क्या सब नई चीज बुरी नहीं होती, सब पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, इसका मतलब पुरानी भी अच्छी होती हैं, कुछ नई भी अच्छी होती हैं, कुछ पुरानी भी खराब होती हैं, कुछ नई भी खराब होती हैं। सज्जन लोगों की ड्यूटी तो ये है कि गुण दोष के आधार पर निर्णय करें, व्यक्ति और नए और पुराने के आधार पर निर्णय न करें। ये कालिदास को लिखना पड़ा, कहीं परिस्थिति रही होगी जब उनको ये लिखना पड़ा होगा। माफ कवि जैसे कवि को, जो सबसे महान कवि माना गया, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडना पद लालत्यम माघे संति त्रयोगुण। कालिदास की उपमा बढ़िया है, भारवी का मैं अर्थ गौरव मन छोटे में बड़ी बात कह देना, छोटे कम अक्षरों में ज्यादा बड़ी बात कह देना, ये भारवी में अर्थ गौरव है। और दंडी कवि जो है ना उसमें पद लालित्य, बहुत बढ़िया पदावली है उनकी, सुंदर। और माघे संति त्रयोगुणा, माघ में तीनों गुण है, ऐसी प्रशंसा की। उस माघ कवि को भी लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा बोलो, कौन बताएगा? कालम हियम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी। ये कोई यहां की गप्पे नहीं मार रहा हूं, तुम्हारे विद्यार्थियों के बहुत काम की चीजें हैं ये, चलो नोट लिख लेना। कालम हियम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, क्या अर्थ है इसका? काल अनंत है, निर्वधि कालम ही निर्वधि अनंत है, और विपुलाच पृथ्वी, पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसमें क्या हो गया, ऐसा कौन सी गजब की बात लिख ली जो आपने समय सार की गाथाओं के बीच में इसको डाल दिया? क्यों पुरुषोत्तम बाबू, क्या गलत गजब, क्या है इसमें? काल अनंत है हम नहीं जानते हैं, और पृथ्वी बहुत बड़ी है हम नहीं जानते हैं। जरा प्रसंग को देखो तो इसका अर्थ समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। वो कहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया काव्य लिख रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि राजा लोग प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इन्हें तो फुर्सत नहीं है मरने की है? साधारण जनता घृत लवण तेल तंदुल वस्त्रेन्द्र चिंता सप्तम घी नौन तेल लकड़ी में फंसी हुई है, उसको बेचारे को हमारी बात सुनने की फुर्सत नहीं है। और जो विद्वान लोग हैं ना, ये जलते हैं हमसे। चलेगा विद्वांसा मत्सराग्रस्ता प्रभवा इसमय दूषिता। विद्वान लोग तो मत्सर से ग्रस्त हैं, समझे, मत्सर समझते हैं ना, डाल। और प्रभवा इसमय दूषिता, ये प्रभावशाली लोग हैं, ये घमंड में मरे जा रहे, ये तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहते हैं हमेशा। प्रभुवा इसमय दूषिता, और बाकी के घृत लवण तेल तंदुल बेचारे गरीब लोग उसमें फंसे हैं, तो जीर्ण मंगे सुभाषितम। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो सुभाषित हैं, मतलब बहुत बहुत बढ़िया बातें जो हम जानते हैं, वो हमारे साथ ही मर जाएंगी। जीर्णम अंगे सुभाषितम, मैंने जीर्ण हो जाएंगी अंगे माने शरीर के साथ, कहने शरीर हमारा जीर्ण होगा ना, क्योंकि ये भी जीर्ण हो जाएंगे, हम ही भूल जाएंगे, मरने के पहले भूल जाएंगे कि बाद में भूल जाएंगे। और ये इतनी बढ़िया जो चीज हमें उपलब्ध हुई है, ये जगत इसके लाभ से वंचित हो जाएगा। जो ये कह रहे कि फिर तुम क्यों लिख रहे, जो ये जानते हो, तो उसके जवाब में वहां कवि ने लिखा कि काल अनंत है, अकेले अभी अभी के लोग मत्सर ग्रस्त हैं, क्यों? ये विद्वान, आज के विद्वान हमसे जलते हैं, आज के प्रभावशाली लोग जलते हैं, भविष्य के विद्वान तो हमसे नहीं जलेंगे ना। टूर्नामेंट जी के जमाने में टूर्नामेंट जी के भी प्रतिद्वंदी तो रहे होंगे ना, क्यों जलने वाले लोग रहे होंगे ना। अरे उनसे जलने वाले तो ऐसे रहे कि उनकी जान भी नौबत आ गई। वो जलने वाले ही लोग थे, और उन लोगों में अकेला श्याम तिवारी नहीं था, अजैनी नहीं थे, जैनी भी थे। बताओ जैनी कौन थे? एक किताब है जो गवर्नमेंट ने छपाई है, बुद्धि विलास उसका नाम है, बखतराम साहे की किताब है वो, जो टोडरमल जी के मरने के 3 साल बाद लिखी गई। वो बखतराम साहे, बुद्धि विलास किताब का नाम है ना, जिस आदमी ने लिखी वो टोडरमल जी का समकालीन था, प्रतिद्वंदी विद्वान था, वो भी संसदीय विद्वान था, सामने वाली पार्टी में मंत्रतंत्रवादी। तो उसने ये लिखा है उस किताब में, उसकी पंक्तियां मैं बोल के सुनाऊं आपको। गुरु तेरे पंथ ने को धर्मी, टुकडर मल्ल नाम साहनी। तेरे पंथियों का गुरु, जैनियों का नहीं, टोडर मल्ल नाम का साहूकार, धर्मात्मा। गुरु तेरे पंथन को धर्मी, टोडर मल्ल नाम साहनी। भूप ताही मालो छन माही, गाड़ो माद गंदगी ताही। उसको राजा ने एक क्षण में मरवा दिया और गंदगी में गड़वा दिया। ये लिखा, ये कब लिखा? 1827 में। टोडरमल जी कब मरे? 1824 में, 3 साल बाद। बहुत ताजी घटना है, उस आदमी ने अपनी आंखों के सामने देखी थी। और फिर जो लिखा है वो गजब का है कि हे भव्य जी, वो तुम जानते हो ये टोडरमल जी क्यों मारा गया? क्योंकि ये मंत्र तंत्र का विरोध करता था, समझे ना, ये देवी देवताओं का विरोध करता था, उन्हें पूजने को मना करता था, समझे आप। वो सारी बातें लिखी जो 13 पंथियों की हैं, इसकी वजह से ये मारा गया। यदि तुम चाहते हो कि तुम नहीं मारे जाओ, तो तुम मंत्र तंत्र की साधना करो, देवी देवताओं को पूजो। ये सब लंबा चौड़ा उपदेश उसने उसके बाद में दिया। माने उसे भी बहुत खुशी भरी थी कि चलो हमारा एक प्रतिद्वंदी खत्म हो गया। तो टोडर मल जी से भी जलने वाले बहुत थे। आज का जमाना तो बहुत अच्छा है, इस लेवल के जलने वाले नहीं हैं, और होंगे तो इस लेवल की उनकी कसाई नहीं है, और कसाई होगी तो ऐसा मूर्ख कोई राजा नहीं है जिसे भड़का करके दे गंदगी में मरवा के गंदगी में गलवाने। परिस्थितियां वैसी नहीं है, कसाएं वैसी हो सकती हैं। तो ये बात उसने लिखी, क्या लिखी कि बहुत आगे भविष्य में आएगा। अब आज टोडरमल जी लिख के गए मुख्यमंत्री का तक, तो नहीं लिखते तो आज हम क्या करते? अरे भविष्य बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे। क्यों? तो मां कभी कहता है मेरे काबिल में दम होगी, तो भविष्य बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे। मैं चिंता नहीं करता हूं अभी कोई नहीं है तो। वो पृथ्वी बहुत बड़ी है, यहां नहीं मिलेंगे, जयपुर में नहीं मिलेंगे तो जोधपुर में मिलेंगे, जयपुर में नहीं मिलेंगे तो बम्बई में मिलेंगे, बम्बई में नहीं मिलेंगे तो आप सुनिए ना अमेरिका में मिलेंगे। अब समझ में आया ना, कालो ही अम निर्बधि विपुलाच पृथ्वी, इस शब्द का अर्थ समझ में आया कि नहीं? काल अनंत है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। सामान्य तरीके से लगता है साधारण सी बात कही है, लेकिन जब आगे पीछे का प्रकरण पढ़ो, और जिस प्रकरण में उस कवि ने ये बात कही है ख्याल में है ना, तब आपको उसका अर्थ ख्याल में आएगा। इसलिए भाई ये लिखना कोई एक काल के लिए थोड़ी होता है, अकेले सामने वाले हैं बोलना एक समय के लिए हो सकता है, लेकिन भाग्य की बात आज तो ऐसी है कि बोलना भी अकेले तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, हो सकता है सारे देश में कितने लोग सुन रहे हैं, 1600 सुन रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, उनके लिए भी है। टीवी पे जाएगा तो फिर हजारों लोग सुनेंगे, उनके लिए भी है। कैसे तो सीडी बन गई और आप ले जाओगे तो कल भी सुनोगे, परसों भी सुनोगे, लंबे काल के लिए। आप तो साहित्य जैसा हो गया है बोलना भी, बोलना भी कैसा हो गया है साहित्य जैसा। तो अव्यक्त के जो दो बोल किए शुरू शुरू के, पहला कौन सा है बोलो, बोलो भाई क्या नाम, क्या नाम तुम्हारा, गप्पूलाल, बोलो भाई गप्पूलाल मारो एक आज गप। अरे गे भावों से भिन्न, गे माने समझे सारी दुनिया, सही दृद्ध लोक क्षेत्रमयी लोक है व्यक्त और उससे भगवान आत्मा है जुदा, इसलिए वो है अव्यक्त। अव्यक्त का एक अर्थ ये, और दूसरा रागादी भाव है व्यक्त, भावक भाव है व्यक्त, और ये भगवान आत्मा उनसे भिन्न है इसलिए है वो अव्यक्त। और तीसरे बोल की चर्चा अपन कल करेंगे 37 मिनट।